أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 44 تک کریں گے. بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں ہمارے لیے ان آیات میں، خاص طور پہ عورت ہونے کے ناطے بہت کچھ ہے، بہت سے سبق ہیں، بہت سی نصیحت لینے کی، سمجھنے کی باتیں ہیں، شاید جو ہمیں بچپن سے اس طرح سے نہیں سکھائی جاتی، قرآن ہمیں سکھاتا ہے. دیکھتے ہیں آج کا لیسن. اب ہم یہاں سے جو اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ اصل میں اب ڈائریکٹلی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ 33 آیت سے وفد نجران کو بتایا جا رہا ہے. ان کا چونکہ ایمان تثلیث کا تھا، یعنی ٹرینیٹی کا تھا، کہ خدا اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، یہ تینوں خدا ہیں اور اس قسم کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں یہاں پہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے موجزانہ پیدائش یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے اس کے بارے میں بتایا. تو یہاں پہ موجزاتی پیدائش کا ذکر ہے اور اسی طرح حضرت مریم کی پیدائش کا بھی ذکر ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بہت خوبصورت آیت، اللہم مالک الملک والی، کہ اللہ ہی ہے جو بادشاہت کسی کو چاہے عطا کرے، جسے سے چاہے لے لے، وہ چاہے تو کسی کو عزت دے، چاہے تو کسی کو ذلت دے. اور عزت ہم نے کہاں دیکھنی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا. پھر ہم نے دن اور رات ایک دوسرے میں داخل ہونے کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، زندہ کو مردہ سے نکالنا اور مردہ کو زندہ سے نکالنا. تو اپنے آپ پہ آپ نے غور کیا کہ میں کیا تھی، میں ایک ذرہ تھی اور اب اپنے آپ کو دیکھیں، ایک بوند تھی اور آج میں کیا ہوں. بیدک الخیر، ساری کی جسٹ یہ ہے کہ اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کن کے ساتھ ہم دوستی کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور بہت امپورٹنٹ یہ، قیامت کے دن انسان جب اپنے عمل کو دیکھے گا تو کیسے وہ چاہے گا کہ میری برائیاں مجھ سے اتنی دور ہو جائیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی محبت اگر پانی ہے نا، اور آپ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے نا ہر محبت کو. آپ دعوے کتنے بھی کرتے رہیں کہ مجھے بہت محبت ہے، مجھے اللہ سے، رسول سے، میں تو اپنی جان دے سکتی، میں فلاں کر سکتی، لیکن دیکھیں دعوے صرف باتیں ہیں جب تک کہ ان کا ثبوت نہ ہو. اور ثبوت یہ ہوگا کہ جب ہماری زندگی میں اتباع سنت ہوگی. جتنی زیادہ سنت کی اتباع ہوگی، اتنا ہی زیادہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروف مانگا ہے. اور جتنی اتباع ہوگی اتنی اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. تو آپ نے سوچا کہ ہم نے کیسے اتباع کرنی؟ چھوٹی سی کتابیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی گئی ہیں. تو ہم تو پہلے سنتوں کو یہ کر کے رد کر دیتے ہیں نا کہ سنت ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا. تو بس ٹھیک ہے، یہاں پہ اتباع کہا گیا اور میں نے آپ کو اطاعت اور اتباع میں فرق بتایا تھا اور صاف کہہ دیا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. آپ نے محبت ثابت کرنی ہے اللہ سے تو یہ کرنا ہوگا، ورنہ وہ زندگی جو اس زندگی سے دور ہے اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے. اور وہ دعوے جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، محبت کے دعوے وہ جھوٹے ہیں. تو اس کو ہمیں سیریسلی لینا ہوگا، سبق پڑھ کے آگے نہیں جانا. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ذہن میں یہ تھا کہ ہم ہر سبق کے بعد کوئی ایک سنت دیکھ لیا کریں جو ہم پریکٹس کریں پورے ہفتے، اس طرح ہمارا ایک ریمائنڈر بھی ہو جائے. तो इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि आपको एक सुन्नत बताई जाए। आज का सबक देखते हैं, बड़े लोगों की बातें हैं, वीआईपीस की, आज सेलिब्रिटीज की। बहुत शौक होता है ना हमें बड़े बड़े लोगों के बारे में जानने का, कैसे रहते हैं, अच्छा क्या करते होंगे, फिर उनके इंटरव्यू पढ़ते हैं ना। आज अल्लाह ताला ने हमें इंट्रोड्यूस कराया बड़े लोगों से, बड़ी हस्तियों से। और वो कौन हस्तियां हैं जानना चाहेंगे? और ख़ास तौर पे औरतों का जिक्र है आज, तो इसलिए ये ज़्यादा हमसे रेलिवेंट भी बात है बहुत। ठीक है, अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अल्लाह अस्तफा आदम व नूह व आल इब्राहिम व आल इमरान आल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है आदम अलैहि सलाम को और नूह अलैहि सलाम को और आले इब्राहिम को और आले इमरान को, आल आलमीन। आप देखें सुभान अल्लाह, ये नहीं कहा गया आले आदम को और आले नूह को चुना। नूह अलैहि सलाम और आदम अलैहि सलाम इंडिविजुअली चुने गए, और इब्राहिम अलैहि सलाम और इमरान अलैहि सलाम इनकी, उनको भी और इनकी औलादों को भी अल्लाह ताला ने चुना। चुनने का मतलब क्या है? क्या चुनना, किस चीज के लिए चुना, क्या करना था इन्होंने, चुन के क्या होता है असल में? चुना किस लिए? अपने दीन की खिदमत के लिए, अपने पैगाम को आगे देने के लिए। अल्लाह ताला लोगों को खास करता है, उनको चुन लेता है, चूज करता है, और ये टोटली अल्लाह का चुनाव होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी मेहनत करे और वो नबी बन जाए। जैसे आप वली बन सकते हैं अल्लाह के, लेकिन नबी मेहनत से नहीं बन सकते। ये अल्लाह ताला की एक चुनाव है जिसमें किसी का अमल दखल नहीं, किसी की दुआओं का दखल भी नहीं कि कोई दुआएं करके नबी बन जाए, अल्लाह मुझे आपसे नबी बना दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह चूज करता है, प्योरली उसकी चॉइस होती है कि वो किसको चूज कर ले। और ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को इंसानियत की गाइडेंस के लिए चूज कर ले। इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं होता, क्योंकि इंसानों के अंदर सबसे ऊंचा मकाम नबूवत का है, रिसालत का है, सुभान अल्लाह। तो इस दुनिया में जो इंसानों में सबसे अफजल इंसान है वो अंबिया है, और आल मतलब जो उनके मिशन को आगे लेने लेके जाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले देखते हैं कि आदम अलैहि सलाम को कैसे चुना, क्या स्पेशल चीज उनको दी। एक तो सबसे पहली बात ये कि वो नबी थे, ठीक है, और सारे इंसानों के बाप अबुल बशर थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथों से बनाया था। जानते हैं कौन सी वो चीजें जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैदा फरमाया? हर चीज को नहीं अल्लाह ने अपने हाथों से पैदा फरमाया। कलमाए कुन से पैदा हुई हूँ, आसमान जमीन ये सब चीजें कलमाए कुन से पैदा हुई। मगर हदीस में आता है तीन चीजें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया। उन तीन चीजों में एक आदम अलैहि सलाम भी है। सोचें कितना बड़ा शर्फ अल्लाह ताला ने इंसानियत को अता फरमाया। फरिश्तों को हाथों से नहीं बनाया, जिन्नों को हाथों से नहीं बनाया, जानवरों को हाथों से नहीं बनाया। इंसान तेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने कितना इसके लिए इहतमाम किया कि अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथ से पैदा फरमाया। दूसरी क्या चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा फरमाई? कलम को। और तीसरी गेस कर सकते हैं किसको बनाया अपने हाथ से? जन्नतुल फिरदौस। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस की दुआ करो, जब दुआ करो आला तरीन जन्नत। सारी जन्नत को नहीं अपने हाथ से बनाया, लेकिन जन्नतुल फिरदौस को अपने हाथ से बनाया अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से बनाया, उनको इल्म दिया चीजों का। आपने पहले पारे में पढ़ा था ना, और फरिश्तों को सजदा करवाया इनको, और जन्नत का मकीन बनाया इनको। फिर इनसे जब गलती हो गई थी तो अल्लाह ने इनको कलिमात सिखाया कि इनसे दुआ करें मुझसे, और उनको उनकी तौबा को कबूल किया था। और ये बहुत बड़े शर्फ हैं जो अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाया, इनको स्पेशल किया। फिर इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सारा ज़माना गुजरा जिसमें लोग हिदायत पर ही थे। फिर जब लोग गुमराह होने लगे तो अल्लाह ताला ने किसको चूज़ किया आउट ऑफ ऑल द पीपल? नूह अलैहिस्सलाम को। नूह किससे है? ये लफ्ज़ नून व हा से, नौहा करने वाला, बहुत ज्यादा रोने वाला। ये उनका नाम क्यों है? इसलिए कि 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे लेकिन लोगों ने नहीं सुना, और ये रोते थे लोगों की गुमराही देख के। ये सोचें कि एक आदमी और उसकी अपनी बीवी और अपना बेटा भी नहीं समझ रहे बात को, तो कितना रोना होगा। इनकी गम की कहानी सूरह हूद में इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप पढ़ेंगे। तो इनको बहुत लंबी उम्र मिली, और उनको इस लंबी उम्र मिल जाना कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं है। असल बात क्या है कि इस उम्र में इन्होंने इतनी अल्लाह के दीन की खिदमत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, इंसानों में बेहतरीन बेहतरीन इंसान वो है जिसको लंबी उम्र मिले और उसमें वो नेकियां करता रहे। तो अगर लंबी उम्र अल्लाह ताला किसी को दे और वो अपनी सारी उम्र नेकियों में गुजारे तो उसके लिए ये लंबी जिंदगी अच्छी है। इनको तो 950 साल तबलीग के ही मिले, इतनी तो लोगों की जिंदगी भी नहीं होती। और उलुल अज़्म पैगंबरों में से हैं, यानी 5 जो टॉप के पैगंबर हैं उनमें से हैं। और सोचिए कि लगन कितनी होगी अपने काम की। सूरह नूह हम पढ़ेंगे 29th पारे में जब जिंदगी रही तो इंशाल्लाह, कि किस तरह ये इन्होंने कहा कि अल्लाह मैंने दिन रात लोगों को तेरी तरफ बुलाया, ना दिन देखा ना रात देखा, लोगों को हर वक्त तेरी तरफ बुलाता रहा। हम देखें सोचें, 2-4 दफा हम किसी को कह देते हैं ना, इवन अपनी औलाद को भी कहते हैं बस अब बड़ी हो गई, अब मैं थक गई उनको कह कह के। लेकिन सुभान अल्लाह, नूह अलैहिस्सलाम की डेडिकेशन देखें आप कि कितनी होगी कि वो थके नहीं और वो 950 साल बोलते रहे, एक ही पैगाम देते रहे, एक ही बात करते रहे, हर हर तरह से की। कभी उनको कुछ खबरियां दे के, कभी उनको डरा के, कभी किसी तरह, कभी किसी तरह। और इनको शर्फ हासिल है कि इनको आदमे सानी कहा जाता है, क्योंकि इनसे इंसानियत दोबारा शुरू हुई थी, सब टूट गए थे, खत्म हो गए। तो अल्लाह ताला ने इनको भी चुन लिया। अब आगे नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में देखें किसको चुना फिर अल्लाह ताला ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी फैमिली को। आले इब्राहिम डजंट मीन कि सिर्फ उनकी फैमिली, उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी इंक्लूडेड है। और आप देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे बड़े पैगंबर हैं, और एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम से तो कितने पैगंबर आए, इतने पैगंबर आए कि यानी सारे पैगंबर सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जितने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद पैगंबर आए हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से, सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा तामीर किया, अल्लाह ताला ने इनकी औलाद से मक्का आबाद कराया, एक शहर शहर रहती दुनिया तक लोगों की तवज्जो का मरकज रहेगा। अल्लाह ताला ने इनको इमाम बनाया सारी इंसानियत का, याद है आपको पहले पारे में हमने पढ़ा था, सारी इंसानियत इनकी तरफ लुक अप करती है। देखिए आप यहूदी हैं या ईसाई हैं, सब इनको मानते हैं, सब इनकी ताजीम करते। तो ये कितना बड़ा ऑनर है, और एक बंदे के लिए कितनी बड़ी ये बात है कि उसकी औलाद में से पैगंबर पैदा हो, और औलाद से बाहर नहीं फिर कोई हुआ। फिर आले इमरान को अल्लाह ताला ने चुन लिया, इमरान अलैहि सलाम को भी और उनकी औलाद को भी। और हिस्ट्री में ना दो ही इमरान का नाम आता है, एक इमरान है मूसा अलैहि सलाम के वालिद, उनका नाम भी इमरान था, तो उनके भी दोनों बेटे पैगंबर हुए। और दूसरी इमरान है हजरत मरियम के वालिद, और यहाँ पर वही मुराद है इसलिए कि उन्हीं की आगे बात हो रही है। आप देख लें ना, नजरान का वफद आया हुआ, ईसाई है जो उनको मानते हैं हजरत मरियम को, हजरत ईसा अलैहि सलाम को, और किस तरह उनके कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो यहाँ पे वो क्लियर किया जा रहा है। तो हजरत इमरान को इमाम बनाया बैतुल मकदस का, वो इमाम थे, अल्लाह ताला ने उनकी भी औलाद को भी चुन लिया, अलल आलमीन तमाम जहान वालों पर, उनके जमाने के लोगों को, लोगों पर।
और ये बड़ा ही बहुत बड़ी बात होती है अल्लाह ताला किसी को चुन ले। देखिए एक तो होता है ना पैगंबर बना के अल्लाह ताला की किसी को चुन ले, वो तो प्योरली है कि दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ने चुन, लेकिन अब तो पैगंबर नहीं आने, तो अब अल्लाह ताला किसी को अगर चुनता है ना अपने दीन की खिदमत के लिए, तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है, बहुत बड़ी बात होती है, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं है। क्योंकि अब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है। यानी अब जैसे पहले जमाने में अंबिया होते थे और अब क्या होंगे, उलमा होंगे। तो जो भी कुरान का सुन्नत का ये इल्म लेता है ना और आगे इसको पहुंचाने के लिए कोशिश करता है, इंसानियत को दीन पहुंचाने के लिए अपने वक्त लगाता है, अपनी जिंदगी लगाता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ऑनर की बात है, समझने। अल्लाह ताला ये भी चुनता है किसी को। तो पहले तो दीन की समझ इसका पहला स्टेप है। आज आप सबसे पहले ये शुक्र अदा कीजिए कि मिलियंस और बिलियंस लोगों में से अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि आप दीन को समझे। और जिस कुर्सी पर और जिस जमीन की जगह पर आप बैठे हुए ना ये दीन का इल्म लेने के लिए, वो जमीन में सबसे बेहतरीन जगह, ये बहुत बड़ा एजाज है वल्लाही, ये अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। इतना बड़ा इकराम है कि अल्लाह के फरिश्ते पर बिछाए जो अल्लाह के दीन का इल्म लेता है। ये ऐसा मुकद्दस रास्ता है जो इंसान को सीधा जन्नत तक लेकर जाता है। तो ये मामूली बात नहीं है कि फरिश्ते और मखलूकात, जमीन की मखलूकात, आसमान की मखलूकात, समंदर की मछलियां, चींटियां अपने बिलों के अंदर दुआएं मांग रही हैं किसी के लिए, ये छोटी बात है भला? ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। तो कभी ये ना समझे कि मेरा फलां साथी, मेरी फलां दोस्त, देखो वो तो इतनी डिग्री ले रही है और वो तो जॉब कर रही, मैं तो पता नहीं इसके अंदर ही फंस के रह गई, मैं तो पता इसके अंदर ही लग के रह गई। नहीं, आपको नहीं पता, हो सकता है आपके हस्बैंड को भी रोजी आपके इल्म लेने की वजह से मिल रही हो, आपको आप नहीं जानते। कैसे आप कहेंगे, आप ये बात कैसे कह सकती हूँ? ऐसे ही कह सकती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी थे जो इल्म लेते थे, और उनका भाई जो था वो मेहनत मजदूरी करता था। तो एक दिन भाई शिकायत के लिए आया कि ये मेरा भाई जो है ये बस सारा दिन आपके पास बैठ के ये पढ़ता ही रहता है और मेरे साथ नहीं हाथ बटाता कि जो है मेरे साथ आके कोई मेहनत मजदूरी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है जो तुम्हें रोजी में मिल रही है वो इसी की वजह से मिल रही है, हम नहीं जानते। तो ये इल्म इतनी बरकतें लेकर आता है ना कि ये आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी बरकतें कहाँ 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 तक फैलती। तो ये इल्म बहुत बाबरकत इल्म है, लेकिन इस इल्म के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत उठानी पड़ती है, आराम को कुर्बान करना पड़ता है, एंटरटेनमेंट को कुर्बान करना पड़ता है, बहुत सारे शौक अपने छोड़ने पड़ते हैं, तब ये इल्म आता है। ये इल्म मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जिस्म की आराम के साथ नहीं आता, ठीक है? ये जिस्म को आराम अगर आपने देना है ना, उसके साथ ये इल्म नहीं आएगा। कभी नींद को भी कुर्बान करना पड़ेगा, नींद को लिमिट करना पड़ेगा कि मेरे पास सारा दिन में और मसरूफियात है, मैं रात को पढ़ूं या मैं सुबह सवेरे उठ के पढ़ूं ताकि मेरी और जिम्मेदारियां ना इफेक्ट हो। इंसानी इल्ला मा सा, अल्लाह ताला ने फरमाया ना इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी वो कोशिश करता है, जिसकी वो मेहनत करता है, बस इतना ही आपके लिए। तो दीन का भी इल्म आपको उतना ही आएगा जितनी आप मेहनत करेंगे। तो इसलिए ये मकाम और मर्तबे हैं, ये बुलंद मकाम और मर्तबे, और बुलंद मकाम और मर्तबे ऐसे ही नहीं मिल जाया करते, इनके लिए इंसान को मुशक्कत उठानी पड़ती है, तकलीफ सहनी पड़ती है, बगैर थकावटों के नहीं आ जाता, सहल पसंदी से नहीं आ जाता। या आप उधर बर्तन भी धोती रहें, साथ आप क्लास भी ले रही हैं, साथ आप बच्चों से भी बातें कर रही हैं, साथ आप इधर भी अपना सीख भी रही हैं, ये इस तरह से नहीं आता फिर। हाँ, सुनने की हद तक ठीक है, सुन तो लेंगे आप, अच्छी बात कोई भी सुन लेना,
अच्छा है, कुछ ना होने से बेहतर है, मगर अगर आप चाहते ना इल्म के बुलंद मर्तबे आप पाएं, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, ऐसे नहीं आएगा ये। कितने भी साल आप इसी तरह सुनते रहे, इल्म वाले नहीं बनेंगे आप, रासिखून फिल इल्म नहीं बनेंगे। रासिखून फिल इल्म बनने के लिए आपको पहले भी बताया था, बहुत मेहनत चाहिए, और इसके लिए खुद को तैयार करें। इसको भी एक काम समझे अपने लिए, एक साइड की चीज ना समझे, साइड पे चल रहा है चलता रहे। तो अल्लाह ने आप चुन तो लिया है, आगे मेहनत करना आपका काम है, आगे ये सीढ़ियां चढ़ना आपका काम है, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ना। अल्लाह ताला ने फरमाया जुर्रियतन बादुहा मिन बाद, ये औलाद है बाज इनमें बाज में से, बाज बाज की औलाद है। देखिए ना, अब नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है, फिर आगे उनकी औलाद है, फिर इमरान भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, तो ये सब बाज बाज की औलाद में से, तो फिजिकली भी औलाद में से और स्पिरिचुअली भी, यानी नबुव्वत में भी एक दूसरे की औलाद में से। एक जैसे एक का मिशन है, दूसरे का भी वो ही मिशन, जैसे एक क्वालिटीज हैं, दूसरे की भी क्वालिटीज वैसी हैं, एक का मकसद है जिंदगी का वो ही दूसरों का भी मकसद है। तो मिलते जुलते हैं एक दूसरे से इन चीजों में, दीन में, अखलाक में, सिफात में। वल्लाहु समीउ अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला। समीउ अलीम, सुनना, सुनता भी है और सुनवाता भी है, हर एक में सुनने की सलाहियत उसने दी भी, और इल्म वाला भी है और इल्म देता भी है जिसको वो चाहता है। कोई इल्म में से ले नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, इल्म आ नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इसलिए दुआ करनी चाहिए उस अलीम से कि मुझे इल्म अता फरमा। और यही सिफात क्यों अल्लाह ताला की आई यहाँ पे, इसलिए कि दावत का काम करने के लिए यही दो चीजें जरूरी हैं, सुनना और इल्म को आगे पहुंचाना। अब इससे शुरू होती है यहाँ से बात दो खानदानों की। पहले खानदान की बात आती है इमरान की। इमरान, मैंने जैसे आपको बताया, इमरान अलैहिस्सलाम वालिद थे मरियम अलैहिस्सलाम के। यहाँ पे देखते हैं, जिस वक्त अभी हजरत मरियम पैदा नहीं हुई थी और उनकी वालिदा एक नजर मानती हैं, उसका जिक्र है। इज कौलत इमरान तो इमरान, जब कहा इमरान की बीवी ने, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक मैंने, नजर तू, मैंने नजर मानी, लक लिए, तेरे तेरे लिए नजर मानी है अल्लाह मैंने, मा फी बतनी मुहर्ररन, जो मेरे पेट में आजाद किया हुआ, फतकब्बल मिन्नी, बस तू कबूल कर ले मुझसे। सुभान अल्लाह, कि क्या वो औरत होंगी कि उन्होंने अपने पेट के बच्चे के लिए नजर मानी, अभी बच्चा पेट में है, और उस वक्त ही ये नजर मान ली कि मैं अपने बच्चे को तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहती हूँ, तो मेरी ये मन्नत कबूल कर ले अल्लाह, मैं मन्नत मानती हूँ, जो भी मेरा बच्चा पैदा होगा, यानी यही जहन में था कि बेटा होगा तो मैं उसको दीन का दाई, मुबल्लिग ये बनाऊं। उस जमाने में हैकल के लिए बच्चों को छोड़ दिया जाता था, आगे उसकी बात आती है, तो उसके लिए छोड़ दूंगी। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया इज कौलत, याद करो, यानी उस कुर्से याद करो, आप मेंशन करें हैं नबी ये बात, कि वहां से कहानी शुरू की जहां पे अभी मरियम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुई थी। तो उस वक्त उनकी वालदा ने ये मन्नत मांगी, ये दुआ की। और आप देखें कि अभी वो प्रेग्नेंट ही थी कि उनके शौहर फौत हो गए थे, यानी हज़रत मरियम की पैदाइश से पहले, और एक औरत के लिए ऐसी मन्नत मानना और फिर उसको पूरा करना कितनी बड़ी बात है। अब जो पेट का बच्चा है उसको दीन की दावत के लिए मैं आजाद करूंगी, जैसे मैंने आपको बताया बनी इसराइल का ये तरीका था
कि वो अल्लाह के रास्ते में बच्चे इस तरह से दे देते थे हैकल को। हैकल सुलेमानी आपने सुना होगा, वहां पे ये बच्चे खिदमत किया करते थे, लड़के होते थे। जैसे समझ लें जैसे कि हॉस्टल है या कोई मदरसा है, तो वहीं का हॉस्टल भी है, वहीं पे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वहीं पे खिदमत भी करते हैं। अब जाहिर ये हैकल की सफाई सुथराई, वहां के काम, वहां पे इबादत करना, उसके लिए डेडिकेट कर देते थे लोग। तो वो कहने लगी कि मैं ये नजर मानती हूँ और मैं आजाद करती हूँ उसको। आजाद मतलब क्या? यानी मेरी अपनी कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं होगी कि वो मेरी कोई खिदमत करे, मेरे कोई काम करे। यानी मैं टोटली उसको वक्फ कर रही हूँ, दुनिया के कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने हकूक से। और ये भी कितनी बड़ी बात है कि एक औरत ऐसा सोचे, क्योंकि औरतों के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वो दीन के लिए, वो तो और भी ज्यादा। और औरतों के खास तौर पे माँ जो होती है, उसकी बड़ी ये ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा बड़ा आदमी बने। जब वो कहते हैं ना बड़ा आदमी बने, तो जहन में क्या होता है? बड़ा अमीर, बड़ा पैसे वाला, बड़ा ओहदे वाला। पर यहाँ पे इनकी क्या है, क्या ख्वाहिश है? अल्लाह डेडिकेट कर दूँ तेरे लिए मैं अपनी इस औलाद को, अभी नहीं पैदा भी नहीं हुई है सोचे, और उसके लिए क्या ख्वाब देख रही हैं कि वो डिवोट हो जाए तेरे दीन की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह, उनके लिए बड़ा आदमी बनना ये था, हमारे लिए बड़ा आदमी बनना क्या होता? फर्क है ना। इसीलिए फिर आगे देख लें, फिर फर्क है औलादों में भी। और उनकी जब उन्होंने ये नजर मानी होगी, क्या कोई था वहां पे जो इस बात को नोट डाउन कर रहा था? कोई था हिस्टोरियन? कोई था लिखने वाला? कोई भी नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में बयान करके उनके इस जज्बे को वो मकाम दिया है। ये देखिए, एक नीयत एक औरत की, एक नजर एक औरत की, अल्लाह ताला ने कितनी इसको यानी इज्जत दी है, कितना इकराम दिया कि कुरान में उनके अल्फाज को कोट कर दी, रहती दुनिया तक लोग पढ़े। हमें बड़ी फिक्र होती है ना कि लोगों को पता चल जाए हमारी नेकी का, लोग जान लें किसी तरह, लोगों को पता चले मैंने ये किया है। अगर नहीं पता चल सकता तो मैं खुद ही जुबान से बोल के बता दूं। उन्होंने तो किसी को नहीं बताया, उन्होंने तो कहीं इश्तिहार नहीं लगाए, कहीं तारीख दानों के पास जाके अपनी ये बातें नहीं लिखवाई। मगर जब इखलास के साथ इंसान कोई नियत करता है, जब कोई नेकी करता है, तो अल्लाह ताला इस तरह से कदरदानी करता है। जैसे आप देख लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उन्होंने भी कहीं हजारों साल गुजर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मबऊस हुए उससे भी पहले हजारों साल गुजर चुके थे। तो अल्लाह ताला ने कैसे, जिस वीराने में उन्होंने अल्लाह के घर को तामीर किया, क्या एक छोटी सी मामूली सी बस्ती थी, और कैसे अल्लाह ताला ने उनकी इस काम को कबूल फरमाया कि उनके अल्फाज को भी कुरान में मेंशन कर दिया कि लोग पढ़ते रहे। अब कौन बैठा हुआ था वहां पे नोट कर रहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज? लेकिन ऐसे अल्लाह कदरदानी करता है, जब इंसान में इतना खलूस होता है ना कि बस अल्लाह के लिए, अल्लाह उस नेकी को बाकी रखता है। फिर अल्लाह ने तो उन कदमों के निशानों को भी बाकी रख दिया जिन पर दौड़ी थी हजरत बीबी हाजरा, और वो कदम जो पत्थर पर रखे गए थे काबा की तामीर के लिए, क्योंकि एक इखलास था। इखलास, इखलास बड़ी चीज है। देखिए इखलास होता है तो नेकियां बाकी रहती हैं, इखलास ना हो तो नेकियां जाया हो जाती हैं। तो नेकी करते वक्त ना, ये नेकी की नियतों के वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो हमारी इखलास पे होनी चाहिए। अब हम पढ़ने भी आए हैं, क्यों आए हैं? मैं पढ़ा रही हूं, क्यों पढ़ा रही हूं? क्या मकसद है मेरा? पढ़ना चाहते हैं इसलिए ताकि लोगों से बहसें करें, लोगों में अपना मकाम बताएं, कहीं अपनी वैल्यू बनाएं, या किस लिए? तो उन्होंने कहा, अच्छा एक ये भी नोट करने की बात है, मुहर्ररन आजाद किया, ठीक है, दुनिया के कामों से, जिम्मेदारियों से आजाद कर दी, लेकिन आप थोड़ी सी देर के लिए सोचें, एक बच्चे को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर रहे हैं, तो इसको आजादी कोई सोचता है आज? किसी को कह दें भाई ये किसी मदरसे में रहेगा, वहीं पढ़ेगा, वहीं सीखेगा, वहीं खिदमत करेगा, इसको तो हम कहेंगे ये लो ये तो कैद है, आजादी तो नहीं करें कहेंगे ना। हालांकि असल कैद पता है क्या है, कि इंसान अपनी दुनिया के धंधों में इतना गुम हो जाए कि कुछ उसको कुछ और याद ही ना रहे, हम इसको आजादी समझते हैं, हम इसको आजादी समझते हैं, ये कोई लगा हुआ है पैसा कमा रहा है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, और दुनिया की मशगूलियात में फन कर रहा है मजे कर रहा है, ये आजादी हम समझते हैं, हालांकि ये कैद है। असल आजादी ये है कि इंसान खुद को दुनिया के इन धंधों से कुछ फारिग करे, कुछ वक्त निकाले अल्लाह की खातिर, ये आजादी है। शैतान हमारे जेहन में डालता है नहीं, ये कैद है। यहां पे पता चला आजादी है, दुनिया के मशगले तो कभी खत्म नहीं होंगे, इसके काम कभी नहीं खत्म हो सकते, तो आजाद होना है ना, तो अपने आप को इस कैद से निकाल के, यानी इन जिम्मेदारियों से थोड़ा फारिग करके, सब तो नहीं छोड़ सकते, और ना कोई छोड़ने को कह रहा है, मगर इन टेम्पटेशन से, इन जिम्मेदारियों से, इन एंटरटेनमेंट से, इस फन से कुछ निकालें खुद को, और डेडिकेट करें अल्लाह की खातिर, वो आजादी है। और देखें ये इनकी इकलौती औलाद थी जिसके लिए ये दुआ कर रहे हैं, इनका नाम क्या था, इमरान, तो इमरान का हन्ना, हन्ता हन्ना बिनते नाकोस, हन्ना इनका नाम था, कोई अपनी बच्ची का नाम रख भी सकता है, इतनी नेक औरत थी, इतनी इनके अंदर अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अपनी प्यारी चीज को अल्लाह के लिए दे रही। और देखिए अब शौहर भी फौत हो गया, ये भी पता है कि अब और कैसे औलाद होगी, और इतने अरसे बाद एक औलाद हो रही है, पहली औलाद, वो भी पहला बच्चा कितना प्यारा होता है, और उसको भी मैं दे दूंगी, ये कैसी बात है, ये वो ही कर सकता है जो अल्लाह से बेतहाशा मोहब्बत करने वाला, कि वो अपनी प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में दे दे, वो ये नहीं कहती अल्लाह बस मेरा सहारा बन जाए, मेरा वारिस बन जाए, अब शोहर तो है नहीं, अब इसी ने वारिस बनना है मेरा, नहीं, शोहर अगर दुनिया से चला जाए, खुदा ना खास्ता किसी का अभी बच्चा छोटा है या बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो वो तो बच्चे को और ज्यादा अपने साथ चिमटा लेती है, कि अब शोहर भी नहीं, अब यही बच्चा है मेरा जो मेरे लिए सब कुछ है। फतकबल मिन्नी, ऐ मेरे रब तू कबूल कर ले मुझसे, ये फिक्र भी किसको होती है जिसने दिल की गहराइयों से कोई काम किया हो, खलूस से किया हो, तो अब ये होता है अल्लाह बस कबूल कर लेना, अल्लाह मैंने तो दे दिया, अल्लाह तू कबूल कर लेना। और आप बड़े लोगों की बातों में पढ़ते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आपने देखा था कि फिक्र क्या थी, अल्लाह कबूल कर ले, काबा बना के भी दुआ कर ले अल्लाह कबूल कर ले, ये इतनी प्यारी नजर मान के, इतनी बड़ी बात करके भी कह रही है अल्लाह कबूल कर लेना, तो ये दुआ करनी चाहिए। और किस चीज की कबूलियत की दुआ करनी, नंबर वन मेरी दुआ को कबूल कर लेना, नंबर टू मेरी नजर को कबूल कर लेना, ठीक है, तो यहाँ पे औरत की कुर्बानी पता चल रही है, मर्द ही नहीं कुर्बानियां देने वाले, औरतें भी कुर्बानियां देने वाली हैं, बीबी हाजरा को देख लें कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इसी तरह आप इनकी कुर्बानी को देखें, इसी तरह उम्मे मूसा की कुर्बानी को देखें जब बच्चे को पानी में डाल दिया था, तो ये कुर्बानियां औरतों की। इन्नका अंत समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला है और जानने वाला है। कि ए अल्लाह तू मेरे जज्बे को जानता भी है, तू तू मेरी बात को सुन भी रहा है। फलम्मा वदअतहा, फिर जब उसने जन्म दे दिया उसको, अब जब जन्म दिया तो क्या देखा कि ये तो लड़की है। कालत, उसने कहा, किसने, हन्ना ने, रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्था, ए मेरे रब, बेशक मैंने तो जन्म दिया लड़की को। अब एक्सपेक्टेशन क्या थी कि बेटा हो, क्योंकि उसको अल्लाह के रास्ते में देना है ना, तो ये तो लड़की हो गई। और उस जमाने में लड़कियां ये काम नहीं करती थी, हैकल की खिदमत का, या ये लड़कियों को नहीं दिया जाता था, क्योंकि तो जाहिर है लड़की की अपनी कुछ चीजें होती हैं, कोई वीकनेसेस होती हैं। आप पीरियड्स ही देख लें, वो तो उतनी इबादत उस तरह से कर भी नहीं सकते, तो लड़का जिस तरह से कर सकता है। तो मैंने तो जन्म दिया लड़की को, वल्लाहु आलमु बिमा वदअत, और अल्लाह ज्यादा जानता है जो उसने जन्म दिया। ये अल्लाह ताला का कलाम हो सकता है कि अल्लाह ताला को पता है कि उसने क्या जन्म दिया। अल्लाह ताला ने ऑन पर्पज उनको बेटी दी, क्यों, वलई सज्जा का रुकल उनसा, क्योंकि लड़का लड़की की तरह हो ही नहीं सकता था। अगर अल्लाह लड़का दे देता तो वो काम नहीं कर सकता था जो अल्लाह ताला ने इस लड़की से लेना था। तो अल्लाह ताला का ये कलाम हो सकता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बेटी इसलिए दी कि बेटी ये काम करेगी एक बच्चे की पैदाइश का, जो बेटा नहीं कर सकता। आज भी देखें, बहुत सारी लड़कियां लड़के बनने की ख्वाहिश करती हैं, यानी बाज वालदेन तो इतनी बड़ी एक नासमझी का काम करते हैं कि अगर 3-4 लड़कियां हो गई तो पांचवी होगी तो उसको लड़का बना के रेस करते हैं, बाल भी लड़कों की तरह काट देंगे, कपड़े भी लड़कों वाले पहनाएंगे, उसको सब काम भी वही कराएंगे जो लड़कों वाले होते हैं। तो ये अल्लाह ताला के फैसले पर राजी ना होने की अलामत है। इसी तरह बाज लोग बेटी के पैदा होने पर नाखुश होते हैं, ये भी अल्लाह के फैसलों पर नाराज होने की अलामत है कि आपके लिए फैसला किसने किया। ये औरत का तो इसमें कोई नहीं है, बस ना ही वो बेटे पैदा होने पे किसी औरत की बहुत बड़ी खूबी हो गई जी इसके बेटे हुए, ना ही बेटियां पैदा होने पे औरत की कोई कोई बड़ी कमजोरी हो गई। हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, गालिबन सूरह शूरा में है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है मिले जुले देता है, जिसको चाहता है कुछ भी ना दे। ये अल्लाह ताला का टोटली उसके ऊपर फैसला है, किसी का भी ना इसमें कोई कमाल है ना इसमें किसी की कोई कमी है। तो यहां पे ये नहीं फरमाया कि बेटी बेटे की तरह तो हो ही नहीं सकती, कहाँ बेटा और कहाँ बेटी, कहा बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता, फर्क है ना दोनों में। लड़का हो नहीं सकता जैसे लड़की है, इसलिए कि लड़के के अपने रोल है, वो लड़की वाले काम नहीं कर सकता। इस तरह आजकल जो ट्रांसजेंडर का शुरू हुआ है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए कि कुछ मर्द भी ऐसे हैं कि उनको औरत बनने का शौक है, और वो इसके अंदर अपनी बहुत बड़े समझते हैं बड़ाई के हम औरत बन जाए, और उसके लिए ऑपरेशन भी करा लेते हैं, और उसके लिए वैसे ही ड्रेसअप हो जाते हैं। हालांकि लानत की गई है ऐसे मर्दों पे जो औरतों की मुशाबियत इख्तियार करें, और ऐसी औरतों पे जो मर्दों की मुशाबियत इख्तियार करें, लानत। और मुसलमान घरानों में लड़कियों को लड़का बनाया जाता है, लड़कों को तो नहीं, खैर कोई बनाता लड़की, लेकिन लड़कियों को लड़के बना के पेश करना ये बहुत कॉमन है। अल्लाह ताला ऐसी चीजों से भी महफूज रखे। तो जिस चीज के ऊपर भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है किसी को, उसी के ऊपर राजी रहना, अल्लाह के फैसले पे राजी रहना। तो यहाँ पे फिर वो क्यों कहती हैं कि अल्लाह ये तो बेटी हो गई, इसलिए नहीं कि वो बेटी से नाराज थी या बेटी पे नापसंदीदगी थी, बल्कि इसलिए कि आए मैंने तो इसको देना था अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए, अब क्या होगा। ये नहीं कहा कि चलो मैं तो फारिग हूं अब, हाँ चलो अब तो मैं, मेरी जान बच गई है नजर पूरी करने से, क्योंकि मैंने तो, और उन्होंने कहा था ना जो मेरे पेट में है, ये नहीं कहा था कि बेटा, हमने कहा था जो भी मेरे पेट में है अल्लाह ताला मैं उसको, तो उन्होंने इसको पूरा किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा अब हुआ नहीं, अल्लाह ने बेटा नहीं दिया तो ठीक है अब मैं भी क्यों करूं, उसी को उन्होंने डेडिकेट किया जो भी उनके पेट में था। मगर परेशान जरूर हुई कि अब बनेगा क्या, अब होगा क्या। तो सुभान अल्लाह, देखिए आप जो नेक लोग होते हैं वो अपनी नजरें भी पूरी करते हैं। अक्सर हमारे पास ये होता है कि हम नजरें तो मान लेते हैं और बड़े जोश में मानते हैं, मैं 100 नफल पढ़ूंगी, मैं 1000 पढ़ूंगी, मैं फलाने दिन के रोजे रखा करूंगी, अब जिंदगी भर मैंने ये करना है और ऐसे, और उसके बाद जब काम हो गया तो अब पूरी कैसे करें, अब दिल बैठने लगता है, अब फिर पूछने चल पड़ते हैं अब कफारा क्या दें इसका। तो सोच समझ के नजर भी माननी चाहिए, अगर इतना हौसला नहीं है ना कि वो काम कर सके, इतनी हिम्मत नहीं है तो मत माननी ऐसी नजरें, क्योंकि अल्लाह ने थोड़ी आप पे लाजिम किया होता है, आप खुद अपने ऊपर लाजिम करते हैं, खुद वादा है ये अल्लाह से एक कि मैं ये काम करूंगी, और फिर उस वादे के लिए अब कहना कि आप हमसे नहीं होता। तो नहीं है लड़का लड़की की तरह। फिर फरमाती है, वह इन्नी सम्मई तुहा मरियम, और बेशक मैंने इसका नाम रखा है मरियम। मरियम का मतलब क्या है? मरियम एक बहुत खूबसूरत नाम है और एक वाहिद नाम है किसी औरत का कुरान में। पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं है। इमरातु इमरान है, इमरातु नूह है, इमरातु फिराउन है, मगर ना बीबी आसिया का नाम है ना किसी और औरत का नाम सिवाय हजरत मरियम के, सुभान अल्लाह। और इनका शर्फ कितना बुलंद है वो भी आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो इस नाम का मतलब क्या है? बड़ा बामानी नाम है और बहुत खूबसूरत मतलब है इसका। इसका मतलब है अल्लाह की खादिमा, इसका मतलब है इबादत करने वाली, खिदमत करने वाली। हिब्रू का वर्ड है ये मरियम, ठीक है। तो उन्होंने इनका नाम मरियम रखा, जिसको अब वो मैरी कहते हैं लेकिन असल में मरियम है। और इतने खूबसूरत नाम को जो उन्होंने दिया, हमें इससे पता चलता है कि हम भी जब अपने बच्चों का नाम रखें ना, तो ये ना बस देखें कि यूनिक सा नाम हो, बस ऐसा नाम हो जो कभी किसी ने रखा ही ना हो, चाहे कुर्सी मेज ही क्यों ना हो। नहीं, हमें नाम वो रखना चाहिए जो बामाना हो, जो अच्छा मतलब हो उसका, क्योंकि नाम का भी इफेक्ट होता है इंसान की पर्सनैलिटी पे, इसलिए तो उसको उस नाम से पुकारा जाता है। तो हम आजकल यूनिकनेस के चक्कर में ना, या वेस्टर्न नाम रखने के चक्कर में, कि जो इनके नाम हो वो हम किसी तरह रख ले, तो हम खूबसूरत नामों को छोड़ देते हैं। जिससे हम ये देखते हैं कि नाम फौरी रखने में भी कोई हर्ज नहीं, कि उनकी बच्ची पैदा हुई उन्होंने फौरन उसका नाम रख दिया, ये नहीं कि महीने महीने गुजर गए जिन्हें अभी तक हमसे नाम ही सिलेक्ट नहीं हुआ। भैया पहले से ही अगर नहीं भी पता कि क्या जेंडर है बच्चे की, तो इंसान एक लड़कों का नाम सिलेक्ट करके रखे, एक लड़कियों का सिलेक्ट करके रखे, होता क्या है बच्चा पैदा हो जाता है अभी तक भी डिसाइड ही नहीं हो रहा। 7वें दिन का जो कहा जाता है ना, तो वो ये है कि मैक्सिमम 7वें दिन तक रख लिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो हदीस में आता है कि आज रात मेरे हाँ बेटा पैदा हुआ है और मैंने उसको अपने बाप इब्राहिम के नाम पे उसका नाम रखा, तो यानी रात को पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह ऐलान भी करती हैं नाम का। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि माँ भी बच्चे का नाम रख सकती है। हमारे यहाँ अक्सर माँ की कोई से नहीं होती, जो बेचारी पैदा कर रही है, तकलीफ उठा रही है, जो बच्चा पैदा होते कहते हैं दादा दादी नाम रखेंगे, या बाप नाम रखेगा, या कोई मौलाना साहब नाम रखेंगे। तो कम अज कम माँ से भी पूछ तो जरूर लेना चाहिए कि आपकी भी कोई चॉइस है। अगर वो कहती है कि कोई और रखे तो अलग बात है, लेकिन कम अज कम माँ का भी इसमें कोई मशवरा होना चाहिए। और ये भी हमें पता चलता है कि औलाद का पहला हक वालदैन पे ये है कि वो उसको अच्छा नाम दे, अच्छा नाम दे, क्योंकि इसमें औलाद बेचारी तो नहीं कुछ अपना नाम रख सकती ना, ये वालदेन का काम होता है। वह इन्नी उई तो है अभी का वजुर्रियत हमीन शैतान रजीम, और मैं पनाह में देती हूँ इसको और इसकी जुर्रियत को मीन शैतान रजीम, शैतान मरदूद से। तो इनकी इतनी प्यारी ये दुआ है कि देखिए, ठीक है सब वालदेन अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दुआएं और भलाई की दुआएं ही करते हैं, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट दुआ है जिसको हम बाज दफा भूल जाते हैं, कि सबसे पहले बच्चे को हिफाजत में देना है अल्लाह की, किससे? सबसे बड़े दुश्मन से। क्योंकि वो दुश्मन आज से नहीं है, वो दुश्मन अजल से है। जिस वक्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा ही किया था और ये इसने दुश्मनी शुरू कर दी थी, ये इतना जलस हो गया था शैतान। और फिर इसको जब अल्लाह ताला ने धुतकारा था तो इसने कहा था कि अल्लाह मैं इसकी नस्ल को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी नस्लों तक को जहन्नुम में लेके जाऊंगा, मैं इसकी नस्लों को तबाह कर दूंगा अगर तूने मुझे मोहलत दी, मैं सिवाय काम के मैं सबको बहकाऊंगा, बहुत कम होंगे जो बचेंगे। तो वो तो उस वक्त से दुश्मन है। और जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसको कचोका लगाता है। हदीस में आता है हर नौमौलूद को शैतान मस करता है जब वो पैदा होता है, जिसकी वजह से वो रोने लगता है, सिवाय हजरत मरियम की और उनके बेटे की। तो शैतान पोक करता है। आप सोचिए कि कैसा बच्चा दुनिया में, जो बेचारे इसको पता भी नहीं है कि मेरा कोई दुश्मन है, उसने तो अभी कोई कोई जानता ही नहीं किसी चीज को, ये इतना दुश्मनी रखता है, इसको इतना बुग्ज है इंसान से कि उस वक्त भी नहीं छोड़ता। तो इस दुश्मन से अल्लाह की पनाह लेने की जरूरत, इवन बच्चा पैदा हो जाना, वो तो उस वक्त भी आयतल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए ताकि शैतान ना करीब आए। लेकिन वो भी एक समझने वक्त है, लेकिन उससे भी पहले जब भी मियां बीवी आपस में ताल्लुक कायम करें तब भी दुआ करनी चाहिए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, बिस्मिल्लाहिल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान जन्निबी शैतान में मारा जखता ना, कि उस वक्त ही दुआ करें, आप मस्तून दुआओं में आपको मिल जाएगी, कि आप उस वक्त अपनी औलाद को शैतान से बचने के लिए दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला जब औलाद पैदा हुए इस ताल्लुक से तो अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में ले। और उनकी यानी फार साइटेडनेस देखें, दूरअंदेशी देखें, कि सिर्फ इस तरह से नहीं कि अपनी बच्ची के लिए ही दुआ कर रही, उसकी जुर्रियत के लिए। कौन होगा जो न्यू बॉर्न को ले तो उसके बाद उसकी नस्लों के लिए भी सोचे? अभी तो ये खुद बेबी है, इसकी नस्ल का कहाँ से हमने सोचना? शायद बच्चे बड़े हो जाते हो तो फिर हम उनकी नस्लों का सोचते हो, लेकिन न्यू बॉर्न पे तो कोई नहीं सोचता। लेकिन सोचें कि उनकी फिक्र कहाँ तक थी। यहाँ से पता चलता है कि दुआएं कैसे करनी चाहिए, नेक लोगों की दुआएं कैसी होती थी। अल्लाह इसकी जुर्रियत को भी शैतान मरबूत से बचाना। तो अब हम भी कोई बच्चा पैदा हो ना तो हम भी उसके लिए ऐसी दुआ कर सकते हैं। आप किसी बच्चे को देखने जाएं तो आप ये दुआ कह सकती हैं, बच्ची को देखने जाएं तो इन्नी उइज़ु बिका व ज़ुर्रियता मिनश शैतानिर रजीम। कोई बच्चे को देखने जाएं तो इन्नी उइज़ु बिका व ज़ुर्रियता मिनश शैतानिर रजीम, ऐसे आप दुआ दे सकती हैं। कितनी प्यारी दुआ, अगर उसकी माँ को नहीं भी पता तो उसको सिखा सकती हैं, आप खुद दे सकती हैं, जहाँ पे मुबारकबाद दें वहां पे ये दुआ दें। अपनी औलाद के लिए भी हम ये दुआ करें कि अल्लाह इनको शैतान मरदूद से और इनकी नस्लों को बचाना। तो नस्लों की दुआ करनी है तब से जब अभी बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है? अच्छा, जब खुशी मिलती है तो दुआ याद भी रहती है कि नहीं? किसी को हाँ बहुत दिनों के बाद खुशी मिली है, औलाद पैदा हुई है, जब हमारे यहाँ खुशियां होती हैं मिलती हैं तो क्या होता है कि फौरन रिएक्शन क्या होता है? नाचना झूमना। और यहाँ पे क्या है? दुआएं हैं। फर्क है ना, असल में ऐसे ही तो नहीं, औलादों में भी फर्क आ जाता। फिर यहाँ पे दुआएं हैं, वो नाच झूम नहीं रही, वो इस पे खुशी नहीं कर रही कि अब अच्छा मेरी औलाद हो गई, नहीं, वो पहले सबसे दुआएं कर रही। और हम आम तौर पे ये समझते हैं कि हम ही हैं बस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, हम ही हैं जो अपने बच्चों को, नहीं, बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में देना जरूरी है। हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हम बच्चों को नहीं वॉच कर सकते हर पल, ठीक है? और ये भी दुआ कि अल्लाह हमारी नस्लों तक में सबको ईमान पे उठाना, शैतान से हिफाजत में रखना। और एक और आपको बात बता दूं कि ये जो है ना, इन्नी हुई जुहा भी का जरिया था हमें शैतान रजीम, जब फातिमा रजी अल्लाह का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और हज़रत अली को बुलाया था और उनके पानी लिया था और पानी के छींटे हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर डाले थे और ये फरमाए थे कलिमात, नी उज़ुबिका वज़ुर्रियताह मिनश शैतानिर रजीम।
यानी जो दुल्हन बनी थी वो, तो नेक लोगों के तरीके देखें फिर कैसे होते हैं।